26 महारानी माद्री मेरी सौत बनकर आई अवश्य, लेकिन हमने आपस में एक दूसरे से द्वेष कभी नहीं किया, क्योंकि द्वेष दुधारी तलवार जैसा होता है। वह करने वाले के लिए और जिसे किया जा रहा है उसके लिए दोनों के लिए संहारक होता है। हम आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार करने लगी, क्योंकि प्रेम मनुष्य के मन का एकमात्र ऐसा आविष्कार है जो सबको सर्वाधिक अच्छा लगता है। एक दूसरे को समझकर हम अपना जीवन बिताने लगे। जिस प्रेम से सबने मेरा स्वागत किया था, उसे प्रेम से सबने माद्री का भी स्वागत किया। दो महारानियों के लिए बीच महाराज ऐसे दिखाई देने लगे जैसे दो तारिकाओं के बीच चंद्र। मुझको भी सुख दुख की बातें करने के लिए एक अच्छी सखी मिल गई। जीवन कभी कभी मनुष्य से सुख की होली खेलता है, वह इतने रंग भी खेलता है कि उसे प्राण घबरा जाते हैं। हाथ उठाकर यह कहने की इच्छा होती है कि बहुत सुख बिखर चुका है, उसको मत उलीचो। मेरी भी यह दशा हो गई थी। महाराज की अनुपस्थिति में घंटों में माद्री से गप्पे मारती रहती, उसकी बातें सुनने योग्य होती। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि जैसे बांसुरी के मंजुल स्वर हों। हम दोनों एक बार बातों में डूबे हुए थे। अपने भाइयों शल्य के प्रभावशाली वाक चातुर्य के संबंध में मुझको बता रही थी। अपने वाक प्रतिभा से उसने महाराज का मन तत्क्षण कैसे मोह लिया था, यह कहते हुए वह सिर झुकाए मन ही मन हंस रही थी। महाराज हमारे पीछे आकर कब खड़े हुए थे इसका हमको पता भी नहीं चला। धीरे से आगे बढ़कर हमारे कंधों पर हाथ रखते हुए हंसकर बोले, तो यह भी सच है कि कभी कभी एक ही बयान में दो तलवारें भी रहती हैं। हम लोग संभाल कर उठे। मैं धीरे से बोली, स्त्री तलवार होती है यह किसने कहा है? माद्री ने ही मेरा समर्थन किया, वह बोली, और पुरुष म्यान होता है यह भी कहाँ सच है? महाराज को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, दोनों मिलकर फिर हमको बताओ ना कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है। मैं बोली, पुरुष एक देह है और स्त्री है उसकी छाया। कभी कभी दोनों ओर से जब प्रकाश आता है तब तब देह की दो दो परछाइयाँ पड़ती हैं। हम दोनों आपके वैसे ही परछाइयाँ हैं। माद्री ने मेरा अधूरा वाक्य पूरा कर दिया। मैं विस्मय से उसकी ओर देखती रही। माद्री के उत्तर से भी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों हाथ से हम दोनों को एकदम छाती के पास खींच लिया। प्रसन्नता से हंसते हुए बोले, जब मैं इस नगर का राजा हुआ था तब, जब दिगई सम्राट हुआ तब भी मुझको इतना आनंद नहीं हुआ था जितना कि आज हुआ है। और राजा जब आनंदित होता है तब क्या करता है जानती हैं आप दोनों? दीन दुर्बलों को धन देता है। मैं बोली, नगर में एकाध धर्मशाला बनवाता है या कोई मार्ग तैयार करता है। माद्री बोली, नहीं जी, राजा संतुष्ट होने पर एक ही काम करता है, मृगया। आज हम अरणावत के अरण्य में मृगया करने जाएंगे। उन्होंने एक सेवक द्वारा सेनापति को संदेश भिजवा दिया। मृगया की तैयारी होने लगी। महाराज जल्दी जल्दी महल से बाहर जाने लगे। द्वार से बाहर निकलते समय उनके सिर पर रखा हुआ स्वर्ण मुकुट द्वार पर टंगे हुए पर्दे के रेशमी धागे से अटक गया और नीचे गिर पड़ा। मेरे मन में भय की छिपकली चुक चुक कर उठी। आगे बढ़कर तत्क्षण से तत्परता से मुकुट उठाते हुए मैं बोली, महाराज आज न जाए, क्या ऐसा नहीं हो सकता? कुंती, भीत स्त्रियों का स्वभाव है लेकिन निश्चय पुरुषों का स्वभाव है। मैं अवश्य जाऊँगा, घबराओ मत, मैं युद्ध के लिए नहीं जा रहा हूँ, केवल मृगया करने के लिए ही तो जा रहा हूँ। मस्तक का मुकुट रखकर जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए चले गए। 27 दो दिन बाद ही महाराज वर्णावत से लौट आए। वे अपने साथ मृगया करके कुछ भी नहीं लाए थे। इसके विपरीत उनकी मुद्रा, प्रसन्न रहने वाली मुद्रा, उदास और मलिन हो रही थी। हो सकता है कि अरण में भटकने के कारण ऐसी हो गई हो, हमको देखते ही प्रसन्न हो जाएंगे, सोचकर मैं और माद्री हम दोनों हंसते हुए उनके सामने आई। लेकिन उन्होंने हमारी ओर देखा तक नहीं, सिर झुकाए वे सीधे अपनी भवन की ओर गए। उन्होंने तुरंत ही भवन का द्वार भीतर से बंद कर लिया। बिना कुछ खाए पिए 4 दिन तक वे भीतर ही रहे। बार बार खटखटाने पर भी महल का द्वार खुलता ही न था। संदेह के अनेक बिच्छू हम दोनों के मन को डंग मारने लगे। अंत में विवश होकर हम राजमाता के पास गए। यह सब सुनकर उनकी मुद्रा भी चिंताग्रस्त हो गई। तत्क्षण वे हमारे साथ आए। उन्होंने बाहर के द्वार खटखटाया। भीतर से कुछ कठोर और चिड़चिड़े स्वर आए, कौन है यह? मैं अम्बालिका हूँ, तुम्हारी माता, द्वार तो खोलो, राजमाता ने दृढ़ स्वर में कहा। तत्क्षण भवन का द्वार खोला। इन 4 दिनों में महाराज कितने बदल गए थे। उन्होंने देह पर से राजवस्त्र उतार रख दिया था। सारे देह पर केवल श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे, सिर पर मुकुट नहीं था। आकाश में उड़ान भरने वाले उनकी सशक्त दृष्टि धरती पर केंद्रित थी। मेरे सामने दिग्विजय सम्राट खड़ा था या एक भिक्षु, यह मेरी समझ में नहीं आया। राजमाता ने पूछा, पांडु सुनते हैं तुमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया? राजा होने का क्या अर्थ है कि जैसा चाहे आचरण करो? इन दो लड़कियों का तो विचार किया होता। आगे बढ़कर माता को झुककर नमस्कार करते हुए महाराज बोले, राजा होने के कारण मैं मनमाना आचरण करूंगा, तुम भी यही समझती हो क्या? अब भविष्य में मुझको जो जीवन बिताना है उसका अभ्यास कर रहा हूँ मैं, उसी के अनुरूप आचरण कर रहा हूँ। कैसा जीवन? सन्यासी का सिर झुकाते हुए बोले, पांडु होश में तो हो ना, तुम कुरुवंश के सुपुत्र हो, दिग्विजय सम्राट हो, पर्णकुटी में रहने वाले भिक्षुक नहीं। यह शिक्षा किसने दी है तुमको? राजमाता ऐसे चिल्लाए मानो बिजली गिरी हो। मुझ पर तो जैसे आकाश टूट पड़ा। भाग्य ने माता, अब मैं कुरुकुल का सूर्यपुत्र नहीं हूँ, दिग्विजय सम्राट नहीं हूँ, न किसी का पति हूँ न बंधु, मैं केवल भाग्य के हाथ का खिलौना हूँ। उन्होंने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। जो अधर सेवकों को आज्ञा देने के लिए दिया करते थे वे बुरी तरह कांपने लगे। भाग्य की तुझको आज भी इतनी क्यों याद आ रही है? भाग्य की ढाल आगे करके अपनी कायर की तरह अपना बचाव मत करो पांडव। जब तुमको यही करना था तो तुमने इन दो सुंदर लड़कियों से विवाह क्यों किया? स्त्री को क्या तुमने जूती समझ लिया है कि जी चाहे जब पहन लिया और जब चाहे तब उतार कर फेंक दी? कुछ कठोर होकर भीतर ही भीतर चिंतित स्वर में राजा माता बोली, नहीं माता, चन्नी होकर भी तुम पांडव को पहचान नहीं सकी हो। एक महाभयानक श्राप की अग्नि में मेरे जीवन का उत्साह भंग उमंग भरा सुकोमल अंकुर जलकर राख हो गया है। श्राप? वे दुःशब्द मेरे कानों में ऐसे घुसे जैसे बामी में विषधर नाक घुसते। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। माधुरी तो धम से नीचे बैठ गई। राजमाता ने आगे बढ़कर महाराज के कंधे झकझोरते हुए व्याकुल होकर पूछा, श्राप? कैसा श्राप पांडव, कैसा श्राप, किसका, किसने दिया? निर्विकार भाव से शांत स्वर में महाराज कहने लगे, परसों वर्णाव्रत के अरण्य में मैं मृग्या के लिए गया था, लेकिन देव ने उल्टी मेरी ही क्रूर मृग्या कर रही। अरण्य के साथ घृणा करते हुए एक मृग पर मैंने बाण छोड़ा। बाण मर्मस्थल पर लगने के कारण वह मृग नीचे गिर पड़ा, लेकिन वह मृग की तरह चित्कार नहीं कर रहा था, मानव की तरह छटपटा रहा था। हमारे पास पहुंचने पर वह अपने पैर जोर से पटकने लगा। अपने तप की शक्ति से एक मृग का रूप धारण कर अपने प्रियसी के साथ उस रमणीय वन में रमण करने वाला वह किंदम ऋषि था। अपने मृगदेह छोड़ते समय उसने व्याकुल होकर आक्रोश करते हुए मुझको श्राप दिया। उन्मत्त होकर आज तूने एक प्रणय मग्न प्रेमी को अपने प्रेसी से अलग कर मृत्यु के जबड़ों में ढकेल दिया है। इसीलिए मैं किंदम ऋषि तुझको श्राप देता हूँ कि तू भी प्रणय आराधना की अवस्था में जब अपने स्त्री को आलिंगन पाश में बांधेगा तब मेरी तरह भी तत्काल तड़प कर मर जाएगा। दोनों हाथों में मुझे गुरुओं का दिग्विजय सम्राट बालक की तरह सिसकने लगा। उन्होंने तत्क्षण भवन का द्वार बंद कर लिया। राजमाता द्वार को हाथ से पीटते हुए सिसकियां भरने लगी। माधुरी घुटनों में से छिपाकर अश्रु बहाने लगी। मैं पत्थर की मूर्ति जैसी जड़े हो गई। खेद दुख यातना इन सबसे परे सुन्न। 28 रात को महाराज ने मुझको बुलवाया। गवाचों से गंगा के शांत जल की रुकटक देखते हुए मुझसे कहने लगे, कुंती अब मैं राजभवन छोड़ दूंगा। जहाँ वैभव क्रीड़ा करता है वहाँ संयम का निवास नहीं होता। मनुष्य को सबसे अधिक प्रिय अपना जीवन होता है। यहाँ रहकर मैं निश्चय ही संयम का पालन नहीं कर पाऊंगा, मैं जीवन का रक्षण नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं कल राजभवन छोड़कर नागशत पर्वत जा रहा हूँ। लेकिन महाराज, मेरा हृदय कांप उठा। कुंती, मैं जानता हूँ तुमको मैं कुछ भी नहीं दे सका। सुख के हिमालय से विधाता ने आज मुझको वास्तविकता की गहराई में धकेल दिया है। तुम यहाँ रहकर मेरी स्मृति में आंसू बहाते रहो, यह मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम अपने पीहर लौट जा, माधुरी से भी यही समझा कर कह दो। महाराज, मैं जो कहना चाहते हूँ वह तो सुन लीजिए। कुंती, विशाल वृक्ष पर निश्चिंत होकर आश्रित रहने वाली लताएं बिजली के एक ही धक्के में धड़ाम से नीचे गिर पड़ती हैं। इस क्रूर श्राप से तुम दोनों की ही यही दशा हो गई है। मनुष्य के संबंध में विधि का विधान चूहे के साथ क्रूर खेल करने वाली निर्दय बिल्ली जैसा है। अब जाओ। महाराज, मैं क्या कह रहे हूँ यह आपको सुनना ही पड़ेगा। देह को छोड़कर छाया दूर नहीं रह सकती। पति के बिना आर्य स्त्रियां क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती। हम दोनों ने कल रात ही आपके साथ चलने का निर्णय कर लिया है। दैव के साथ द्यूत खेलने का असफल प्रयत्न मत करो कुंती। विषयों के संबंध में मन पर संयम रखना उतना ही असंभव है जितना कि आकाश और सीम खोखलेपन को सिंदूर की डिबिया भरने का प्रयत्न करना। महाराज, संबंधों के जाल में हमारी मछली फंसती है या नहीं ये सोचकर यदि काल हम पर घात लगाए बैठा है तो मैं भी उसको यह दिखा दूंगी कि मथुरा के राजा शूरसेन की कन्या हूँ मैं। मैं कुंती प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज से आप मेरे पति न होकर पुत्र हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी संबंध को मैं मन में आने भी न दूंगी। लेकिन पुत्र के बिना भी तो माता जीवित नहीं रह सकती। आपको मुझको तो अपने साथ लेना ही पड़ेगा, मैं रुक नहीं सकती। कुंती, भावुक मत बनो। यदि यह भी नहीं हो सकता हो तो फिर तो आप मुझको गंगा में धकेल कर ही जा सकेंगे। कुंती, कुंती सचमुच तुम्हारे मन के सामने आकाश भी लज्जित हो जाएगा, परंतु काल ने तुम जैसा रत्न इस सभा के पांडव के शाप भग्न मुकुट में क्यों जड़ दिया है भगवान ही जाने। वे थर थर कांपते हुए सिसकने लगे। कुरुकुल के सुपुत्र कुरु ना शोभा नहीं देता महाराज, उसके पैर इतने मूल्यवान है कि साक्षात देव भी उनका स्पर्श कर धन्य हो जाएगा। मैंने दृढ़तापूर्वक उनसे कहा, संभवतः उनका शोक कुछ कम हुआ। उस भयानक श्राप से समस्त राजभवन की शोभा को क्षण भर में नष्ट कर दिया। चार दिन तक भली प्रकार विचार करने के बाद ही महाराज ने राजभवन छोड़ने का निर्णय किया था। यह उचित था या नहीं यह बताना कठिन। वह एक ही बात कहते हैं, वह संपन्न राजभवन में सदैव भीतर ही भीतर कूदते रहने और जलते रहने से अरण्य में रहना क्या बुरा है। इसके अतिरिक्त वैभव मनुष्य को भोगी बनाता है। मनुष्य संपत्ति कीर्ति प्रतिष्ठा सबसे एक बार द्यूत खेल सकता है, परंतु अपने प्राणों से वह कभी भी द्यूत नहीं खेल सकता। संयम के लिए उसको वनवास ही उचित लगा। इससे मैं भी सहमत थी। वैभव की फिसलन भरी काम भूमि पर किसी का भी पैर फिसल सकता है। संयम के लिए जिस गंभीरता की आवश्यकता होती है वह हमको वन में ही मिल सकती थी। हम तीनों ने भी वन जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। 29 हमने राजवस्त्र उतार दिए। देह पर जो आभूषण थे वे राजमाता को दे दिए। हम जा रहे थे, यह बात न जाने वह सहवाग के तिलानगर में पहुंच गए। लोग राजभवन के द्वार पर भीड़ लगाने लगे। हम जाएंगे विचार मात्र से ही महाराज भीष्म और त्रास दुख के समुद्र में डूब गए। उन पराक्रमी पुरुषों की निग्रह आंखों में भी आंसू छल छलाए। देवर विदुर जी अनेक प्रकार से महाराज को समझाने लगे, परंतु महाराज का उनको एक ही उत्तर दिया था, राजभवन और वैराग्य ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हाल ही में दिग्विजय का डंका बजाकर आने वाला सबका प्रिय राजा योगी होकर वन में अरण्य चल दिया। जिन हाथों को कौरवों का राजदंड पकड़ना था, उन्हीं हाथों से अब कमंडल पकड़ना था। इस मुख से विजयी सेना को मारो काटो के उत्साहवर्धन शब्द सुनाए थे, उसी मुख से अब जीवन भर प्राणों की मुक्ति के लिए श्लोकों का पाठ करना था। आश्चर्य के आघात कर लगाने की जितनी शक्ति भाग्य में होती है, उतनी किसी में नहीं होती। अंत में चलते समय दुला हुआ एक सादा वस्त्र पहने हुए महाराज ने सबको झुककर नमस्कार किया। महाराज भीष्म बोले, पांडव पहले मेरे पिता के राजा शांतनु के भाई ने भी इसी तरह राज्य का त्याग किया था। उसका नाम था देवापी। उन्होंने अपनी इच्छा से वनवास स्वीकार किया था। आज तुमको पराक्रम के सिंहासन पर से उठकर वैराग्य के व्याघ्र चर्म पर बैठना पड़ रहा है। इसका एकमात्र कारण दुर्भाग्य है। वन में राजा देवापी की ब्रह्मलीन आत्मा तुमको धैर्य और मानसिक शांति प्रदान करेगी। जाओ, जिस कारणवश तुम यह राज छोड़ रहे हो, उस कारण का प्राणपण से ध्यान रखना, मन पर संयम रखना। जब तक भीष्म है, तब तक कौरवों का डंका आर्यावर्त में इसी तरह बसता रहेगा। यहाँ की चिंता तनिक भी मत करना। हम तीनों ने सबसे विदा लिया और राजभवन छोड़ दिया। हमारे साथ नगर का एक ही व्यक्ति चलने वाला था, वह थी धात्री। मानव विधाता ने उसके कुंती के जीवन पर मृत्यु पर्यंत छाया रखने के लिए भेजा था। उसको कोई नहीं समझा सका। हम चारों नगर में पैदल नंगे पांव चल दिए। इस नगर में मैं महारानी बनकर आई थी और अब सन्यासिनी बनकर जा रही थी। नगरजन आकर लगातार हमारे चरणों पर लौट रहे थे, विलाप कर रहे थे। वे कह रहे थे, महाराज महारानी जी हमको छोड़कर मत जाइए, हस्तिनापुर को अनाथ करके मत जाइए। लेकिन हमको जैसे कुछ भी सुनाई ही नहीं पड़ा था। हमारे कान सुन्न हो गए थे, मन भरा हो गया था। पीछे मुड़कर देखा नहीं जाता था, आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। नगर के बाहर हम लोग गंगा किनारे आए। उसको देखते ही मेरा मन भर आया, मुझको मथुरा की याद आई। यमुना के किनारे मथुरा में मेरा बचपन बीता था, निरागस और भोला भाला। बचपन के पिता ने इस समय कुंती को देखा होता तो भला क्या कहती। पृथ्वी पागलों की तरह श्वेत वस्त्र पहनकर कहाँ जा रही है तू? गोल चक्कर लगाते हुए तितली पकड़ने चल मेरे साथ। मैं क्षण भर वहीं खड़ी रही। वहाँ एक पग भी आगे बढ़ने की मेरी इच्छा नहीं हो रही थी। इस गंगा ने आज तक औरों को न जाने कितनी पीढ़ियाँ देखी होगी, कितनी विजयाँ देखी होंगी, लेकिन आज की घटना उसके मन में पत्थर की लकीर बनकर रह जाएगी। ऐसा दृश्य उसने अपने जीवन में आज एक बार भी न देखा होगा। मैंने धैर्य की दीवार ढहाने लगी। मैंने दोनों हाथ से मुंह छिपा लिया। अचानक ही उंगलियां कान के मोतियों के कुंडलों से जा लगी। उनको उतारने का ध्यान ही नहीं रहा था। मैंने वो उतारे और गंगा के पानी में डाल दिए। पानी का एक गोल वर्तुल विशालतर होता गया। मेरे मानस सरोवर में स्थितियों का एक वलय उठा। वर्ष भर पहले ही मैंने दो जीवित सुनाले कुंडल इसी तरह अश्व नदियों को अर्पण किए थे और आज रात माता के अंतिम स्मृति चिन्ह के रूप में बचे हुए मोतियों के कुंडल गंगा को समर्पित किए जा रहे हैं। अब कुंती मुक्त थी, बाहर से और भीतर से भी। अब उसके पैर पति के पीछे पीछे जहाँ वे ले जाएं वहाँ जाने वाले थे, कहीं रुकने वाले नहीं थे। स्त्री का मन कुछ प्राप्त करने के लिए होता है, सब कुछ समर्पित करने के लिए ही होता है। तीस, हस्तिनापुर से हम लोग नाक्षक पर्वत पर आए। उत्तर दिशा में स्थित इस पर्वत पर हाथियों के झुंड बहुत थे। राजभवन के अभ्यास के कारण अरण्य में कोलाहल मचाने वाले पवन हमको जैसे खाने को दौड़ता था। उस पवन से हाथियों के झुंड भिदक जाते, ची ची करते हुए वे एकदम हमारे पास होते हुए इधर उधर दौड़ने लगते। उस पर्वत पर जैसे तैसे हमने एक मास व्यतीत किया। इसके बाद आगे बढ़े। अब हमारी कोई निश्चित दिशा नहीं थी, हम जो निश्चित करें वही हमारी दिशा थी। पूर्व जन्म के ऋणानुबंध से एक सूत्र में बंधे हुए चार प्राणी थे हम। महाराज को दूर जाते देखकर माधुरी जोर जोर से रोने लगती। मैं अपने को संभाल कर उसको भी संभालती। नाक्षत पर्वत छोड़कर हम लोग चैत्ररथ पर्वत पर आए। चैत्ररथ पर्वत पर थोड़े दिन बिताकर गंधमादन पर्वत की ओर मुड़े। मार्ग में हिमालय पड़ा। उसके दर्शन से मुझको थोड़ी शांति मिली। चारों ओर श्वेत शुभ्र बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी। भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों में रंगे हुए इस स्वांग्या संसार को विदाता उस पर्वत के रूप में जैसे अपने श्वेत शुभ्र दांत दिखाकर अट्टहास कर रहा था। हिमालय में हमको महर्षि व्यास मिले। वे घोर तपस्या करके फिर हस्तिनापुर की ओर लौट रहे थे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, अरे पांडव तुम यहाँ कैसे? महाराज ने जो घटित हुआ था वह सारा वृत्तांत का सुनाया। मैंने उनको प्रणाम किया। मुझको आशीर्वाद देते हुए बोले, कुंती दुर्वासा का कथन सत्य होगा, तुम वीरों की जननी बनोगी। महाराज ने आश्चर्यचकित होकर उनकी ओर देखा। महाराज को लक्ष्य कर वे बोले, पांडव कुंती कौन है यह तुम नहीं जानते। संसार में कोई भी यह बात नहीं जान पाएगा। अच्छा जाओ तुम लोग। वे चले गए मंद मंद गति से, हवा के एक हल्के झोंके की तरह। व्यास जी का कथन सुनकर महाराज कुछ अवश्य पूछेंगे सोचकर मैं सशंक हो उठी, परंतु भगवान की कृपा से उन्होंने इस विषय में उस समय कुछ नहीं पूछा। हिमालय से हम गंधमादन पर्वत पर आए, वहाँ इंद्रद्युम्न सरोवर के किनारे कुछ दिन रहे। वहाँ से हंसपुर पर्वत पार करते हुए अंत में शतश्रृंग पर्वत पर आ गए। इस पर्वत पर सुनील सरोवर थे, हरी भरी वनस्पतियाँ थे, अनेक प्रकार के फल वृक्ष थे, हिरणों और खरगोशों के झुंड थे। यह शतश्रृंग पर्वत मानो प्रकृति देवता के हरे वस्त्र का नीला आंचल था। उस पर्वत पर एक सरोवर के किनारे हमने पर्णकुटी बनाई। हम लोग इतनी लंबी यात्रा कर चुके थे कि अब यहाँ पता नहीं था कि हस्तिनापुर किस ओर है। उस समस्त अरण्य में मानव बस्ती का एकमात्र यही चिन्ह था पर्णकुटी। कौरवों का दिग्विजयी राजा अपनी दो लाडली पत्नियों के साथ पर्णकुटी में रहने लगा। नीला आकाश उस पर्णकुटी पर छत्र धारण किए खड़ा था। अरण्य के ऊंचे ऊंचे वृक्ष उस पर पंखा झलने लगे। अनेक प्रकार के कंदमूलों वाले लताकुंज और फल वृक्ष उनके भोजन का पात्र भरने लगे। वन्य घास की शैया उनको अपने अंक में सुलाने लगी।